और ये पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का पहला श्लोक, पहले उच्चारण। संवादी भ्रमवद ब्रह्मा तत्तोपास्त्यापि मोच्यते उत्तरे तापनीयेतः श्रुतोपास्तिरनेकधा। संवादी ब्रह्मवद ब्रह्मा तत्त्वोपस्त्यापि मोच्यते उत्तरे तापनीयेतः श्रुतोपास्तिरनेकधा। अवतरण तो हो गया ना, इतना अवतरण है। मोक्ष फल का उपासनानी जिधर से इस्तु आदो तावत् सदृष्टान्तम् ब्रह्म तत्व उपासनयापि मोक्षो भवति इति प्रतिजानीते। इसके पूर्व में बताया था कि साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत का अधिकारी कदाचित तत्त्वम पदार्थ श्रवण होने के बाद भी आपको तत्व का अपरोक्ष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीच में प्रतिबंधक है। जैसे कि आपका आंख भी ठीक है, सूर्य की रोशनी भी है, परंतु सामने पतला से एक पर्दा लगा हुआ है, तो पतला सा पर्दा रूपी प्रतिबंधक के कारण आप की आंख ठीक होने पर भी, श्रवण होने पर भी कि सामने बड़े सुंदर भगवान जी विराजमान है, नारायण है, बड़े सुंदर विग्रह है, सूर्य की रोशनी भी है, देख नहीं पाते क्योंकि आप और भगवान के बीच पतला सा पर्दा प्रतिबंधक है। पर्दा हटा, दर्शन हो गया। ऐसे यहां पर आपने खूब उपनिषद श्रवण किया, साधन चतुष्टय संपन्न भी है, सब कुछ है, फिर भी आपको आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक क्या तो बताया था, बुद्धिमांद्य विषयाशक्ति दुराग्रह। बुद्धिमांद है वह, नहीं तो विषयाशक्ति कहीं है वह, नहीं तो दुराग्रह। इन दोस्तों के कारण से आपको अपरोक्ष नहीं हो रहा है, तो अपरोक्ष के साधन अब यहां बता रहे हैं कि उपासना। जो उपासना करेंगे तो बुद्धिमांद्यादि, बुद्धिमांद्य दुराग्रह विषयाशक्ति ये दोष दूर हो जाएंगे। दूर होने के बाद तब जाकर के आपको साक्षात्कार होगा, इसलिए आगे का ग्रंथ बता रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि सब कुछ है, आप उपनिषद श्रवण कर लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी आपको परोक्ष अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में बुद्धिमान विषयाशक्ति दुराग्रह प्रतिबंधक बैठा हुआ है। तो उस प्रतिबंधक को हटाते हुए अपरोक्ष उपासना को बदला रहे। संवादी ब्रह्मवद ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते। दो भ्रांतियां होती हैं, एक का नाम संवादी, दूसरे का नाम विसंवादी। संवादी बोलते हैं सफल प्रवृत्ति, विसंवादी बोलते विफल प्रवृत्ति, समझे ना। संवादी का अर्थ सफल प्रवृत्ति, विसंवादी का अर्थ विफल व्यर्थ प्रवृत्ति। ऊपर से सुन लिए तो पंक्ति लग जाएगी। आप के रास्ते से जा रहे हैं, सामने एक बड़ा भारी मंदिर है, उस मंदिर के झरोखे में एक मणि रखी है, उस मणि की प्रभा रोशनी बाहर निकल रही, एक और बाजू मंदिर है, उस झरोके पर दीपक रखा, दीपक दीपावली के पावन पर्व पर दीपक रखा। अब दीपक की रोशनी बाहर आ रही, प्रभा बाहर आ रही, तो एक आदमी तो दीपक के रोशनी को प्रभा को मणि समझकर दौड़ रहा लेने के लिए कि बड़ा सुंदर रोशनी है, चमक है, कोई है भी नहीं, उठा लो मणि को घर ले चलो, बड़ा काम आएगा। तो जो व्यक्ति दीपक के प्रभा को मणि मानकर दौड़ा, वो जाने पर क्या मिलेगा? दीपक मिलेगा। उसको बोले विफल, बेकार प्रवृत्ति दौड़ना हो गया, उसको बोले विफल प्रवृत्ति बोलते। और दूसरा संवादी है कि मणि की रोशनी में आपने मणि बुद्धि किया, है तो वही भ्रांति, परंतु उस भ्रांति से आप जब दौड़ के जाएंगे पास में तो मणि हाथ लग जाएगी। तो जो साधक होते हैं, बढ़िया मणि, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी इसी चिंतामणि। तो संवादी प्रवृत्ति बोलते हैं सफल प्रवृत्ति, विसंवादी बोलते विफल निष्फल प्रवृत्ति। यहां दृष्टांत देकर समझा रहे कि भाई दोनों ज्ञान अपनी जगह मिथ्या है, चाहे मणि की रोशनी मणि बुद्धि करो अभी झूठा, भाई मणि अलग रोशनी अलग है वही मिथ्या, और दीपक की रोशनी में मणि बुद्धि मिथ्या है। पर एक जगह जो मिथ्या ज्ञान है उससे मणि की प्राप्ति, और दीपक के रोशनी में मणि बुद्धि करेंगे तो निष्फल, ऐसे घटाओ व्यवहार में। तो हो गया दृष्टांत। जो अच्छे साधक है, भजनानंदी भगत हैं, वे लोग संवादी भ्रांति के द्वारा भगवान को पाते हैं। संवादी भ्रांति क्या? उनकी भ्रांति की देवार्चन करो, जप करो, तप करो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, याग करो, इनसे भगवान की प्राप्ति। भगवान साधन निरपेक्ष है, फिर भी आपने साधन में आनंद बुद्धि कर लिया, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है। रामायण में ही बात बताया ना भगवान शंकर ने, और बात तो बड़ा प्रमाणिक है पर लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा उमा कहूं सत अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बड़ा कठिन चौपाई है, सबको नहीं लगती। भगवान शंकर उमा से बोल रहे हैं, उमा कौन है मालूम? घरवाली भाई, घरवाली। आप क्या बोलते घरवाले को? भजन बनाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, मिठाई बनाओ। अच्छी बात बोलना चाहिए ना, ध्यान की बात। भगवान शंकर अच्छी बात बोल रहे हैं, जो सबसे बढ़िया बात। खाली लोग बोलते ना कि जो है ना पुराने लोग स्त्रियों को किचन घर में है ना सीमित रखते थे, ऐसी बात नहीं, सब गलत बात है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। भाई वैदिक काल में स्त्रियों को तो समान अधिकार दिया। देखो नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठती कि नहीं आधासन पर? आज कोई बैठाएगा नेता? क्यों मोदी साहब बैठाएंगे अपने घरवाले को बाजू में? संभव नहीं, कोई कोई भी नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो अपना आसन, अरे भगवान शंकर तो अपना आधा शरीर ही प्रदान कर दिया। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर बन गए, बने कि नहीं? इतना सम्मान दिया शक्ति को, नारी को, स्त्री जाति को, महिला को। तो देखो वैदिक काल में भी पूरा सम्मान था, यहां तक कि गायत्री सावित्री सरस्वती सब तो स्त्री है, गार्गी मैत्रेयी शूलभावती स्त्री है, कितना सम्मान। उमा भी तो स्त्री है, उनको आत्मज्ञान प्रदान कर रहे। तो वैदिक काल में पौराणिक काल में पूरा सम्मान था स्त्रियों को, घर तक किचन तक सीमित नहीं था। यह तो बड़ा भारी वैज्ञानिक व्यवस्था कि भाई घर का खाना पीना साजोबाज माताओं के हाथ में और बाहर कम पुरुषों के हाथ में, तो बढ़िया से व्यवस्था चलती थी, कोई खटपट नहीं। अब तो सब उथल पुथल हो गया ना, हाँ सब अब सब लगे कमाने, और घर में आओ तो ठंड ठंड पाल, समय से भोजन नहीं, भोजन भी तो ठंडी ठंडी रोटी, गर्म रोटी मजा आती ना, ठंडी ठंडी रोटी, मजबूरी की बात अलग है, अब हर दिन ठंडी ठंडी रोटी गर्म गर्म चाय, यह व्यवस्था हो गया। यदि हमारे जीवन में देखा जाए तो जैसा प्राचीन व्यवस्था वैसा हो ना, घर का सारा कारोबार माताओं बहनों के हाथ में सौंप दो, दखल मत दो, और आपका काम है बाहर कमाकर घर में लाना। ये घर का काम बाहर के काम से बड़ा भारी है, ये लोगों के मन में बड़ी भारी भ्रांति है। क्या भ्रांति जानते हैं? कि ऑफिस में जाना और पैसा कमाना बड़ा भारी काम, वो तो सस्ता काम है, थोड़ा सा काम है। चार दिन भोजन बना के देखना, दिमाग खराब हो जाएगा। सब्जी बनाने में ही वो हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया है, ये है वो है, उसको इतना मात्रा में डालो, जरा सी ज्यादा हो गया तो गड़बड़, कम हो गया तो स्वाद नहीं, अधिक पकाया तो मजा बिगड़ जाएगा, कम पकाया तो कच्चा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, इसके बाद साफ सफाई रख रखाव छोटा मोटा काम नहीं। तो ऋषियों ने ऐसा व्यवस्था बनाया था कि भाई घर का कारोबार माताएं बने संभाले और बाहर काम पुरुष, है ना। पर आजकल समझ जरा विपरीत हो गई कि नहीं, बाहर का काम ही बड़ा काम है, तो सब बाहर काम में लग गए, सब भाग रहे, तो वह व्यवस्था फैल रही। देखो तो भगवान शंकर क्या करे, उमा कहूं अनुभव अपना, अपना अनुभव बता रहे सार, अपने जीवन का निचोड़ बिल्कुल सार। जैसे दूध का सार क्या होता है, घी, ऐसे सार बता रहे। सत हरि भजन आगे क्या है, जगत सब सपना। इस चौपाई को लगाओ, कैसे लगाएंगे, सत ये रुक जाओ, आगे कुछ नहीं, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि नहीं, हरि भजन जगत सब सपना, तब पंक्ति लेगी यहां की जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे मणि की रोशनी भी मिथ्या, दीपक की रोशनी भी मिथ्या, मणि अलग चीज है, रोशनी अलग चीज है, पर मणि के रोशनी में मणि बुद्धि करके दौड़ेंगे तो मणि मिल जाएगी, है तो भ्रांति वो भी, परंतु तो दीपक के रोशनी को मणि मानेंगे तो दीपक मिलेगा, मणि नहीं मिलेगी, दोनों मंत्र ये है। तो यहां पर भी सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि सोपाधिक ब्रह्म का नाम है। अब बात आलो समझ में जाएंगे, आज आ जाएगा, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चौपाई भाई वेदांत क्या कहता है, एक ब्रह्म ही सत्य है, सच्चिदानंद है, और जो ईश्वर है सोपाधिक है, मायोपाधिक है। भगवान शंकर भी मायोपाधिक, हरि भी मायोपाधिक, विष्णु भी मायोपाधिक, सब मायोपाधिक है, माया उपाधि वाले हैं। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सपना है ही, भजन भी सपना हो जाता है एक दिन, और हरि भी आपके सोपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है। तो पंक्ति कैसे लगाएंगे, सत पर वहीं रुक जाना, कोमा दे देना, मतलब भगवान शंकर बोले हे उमा अपना अनुभव सुना रहा हूं, सत्य बस सत्य ही सब कुछ है और हरि भजन जगत सब सपना, सब सपना है। कोई हरि भजन करता है, कोई शिव भजन करता है, कोई कृष्ण भजन करता है, कोई गौ माता का भजन करता है ना, कोई विराट परमात्मा की भक्ति करता है। तो पंक्ति लगाना कि सत यहां रुक जाना, हरि भजन जगत सब सपना। तो देखिए ये सब क्या हो गया, संवादी भ्रांति हुआ है, तो संवादी, तो इस संवादी भ्रांति के द्वारा आप सत तक पहुंच जाते हैं, ऐसी पंक्तियां लगाना है। तो जैसे कि मणि की रोशनी भी मिथ्या, दीपक की रोशनी भी मिथ्या, तो रोशनी अलग है मणि अलग है, पर जिसने मणि की रोशनी में मणि बुद्धि किया है वो तो मणि को पालेगा, जो दौड़ेगा जाएगा पास में उसके हाथ मणि लग जाएगी, पर जिसने दीपक के रोशनी को मणि माना है वो दौड़ कर जाएगा तो दीपक हाथ लगेगा, मिट्टी का लोहे का चांदी का दीपक मिलेगा, इतना ही मिलेगा, भ्रांति है दोनों। ऐसे यहां पर पंक्ति लगाओ कि संवादी मतलब कि सफल प्रवृत्ति, यहां भ्रांतियां दोनों है, क्योंकि मार्ग हमेशा अधूरा होता, यदि आपने सन मार्ग को अपना लक्ष्य बना लिया, साध बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सत्संग करना है, हरि भजन करना है, ना देवार्चन करना, जप करना है, इस साधन में यदि आपकी सद्बुद्धि हुई तो इस संवादी प्रवृत्ति है, इसके द्वारा धीरे धीरे आप सत तत्व तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। पर जिसने जगत को ही ब्रह्म मान लिया, जगत मतलब संसार, संसार के कारोबार को, बिजनेस को, व्यापार को, व्यवसाय को क्या माना कि बड़ा आनंद है, बड़ा इससे शांति मिलती है, इससे प्रतिष्ठा मिलता है। उपनिषद में गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से, बताओ ज्ञानी की प्रतिष्ठा क्या, उत्तर क्या दिया, स्वे महिमनी नवा महिमनी। अज्ञानी जीव की प्रतिष्ठा होती धन से, धान से, पद से, मान बढ़ाई से, प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित अपने को मान लेता, परंतु ज्ञानी की प्रतिष्ठा क्या है, तो का स्वमहिमनी अपने महिमा में प्रतिष्ठित है, स्वरूप में, नवा महिमनी या किसी की अपेक्षा है नहीं, वो महिमा प्रतिष्ठा से ऊपर उठ गया है। तो संवादी भ्रांति हो चाहे विसंवादी, दोनों भ्रांति हैं, पर एक भ्रांति से परमात्मा की प्राप्ति, दूसरे भ्रांति से कुछ भी हाथ नहीं लगना है। वही दृष्टांत दे क्या समझा रहे कि भाई आपने खूब बढ़िया से वेदांत श्रवण किया, उपनिषद श्रवण किया, जब तब भी किया, फिर भी जीवन में कोई चमक नहीं, चमत्कार नहीं, बदलाव नहीं, आत्मानुभूति नहीं, तो उत्तर दिया कि आपके तीन प्रतिबंधक हो सकते हैं, बुद्धिमान देव, विषयाशक्ति, दुराग्रह। इस प्रतिबंधक के कारण आत्मा का परोक्ष अनुभव नहीं हो रहा, उस प्रतिबंधक को दूर करने के लिए उपासना बदला रहे, भई आप उपासना करेंगे तो उपासना के द्वारा प्रतिबंधक दूर हो जाएंगे, तो तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। जिस प्रकार से सामने बड़ा सुंदर भगवान की मूर्ति है पर पतला सा पर्दा टंगा हुआ है, सूर्य की रोशनी भी है, आंख भी हमारी ठीक है, परंतु पतला सा पर्दे के प्रतिबंधक होने से आंखें भगवान का दर्शन कर नहीं पाती। अब पतला सा पर्दा हटा दे फिर दर्शन हो जाता है। ऐसे ही आपने श्रवण कर लिया, दृष्टि प्राप्त हो गई, विचार की सामर्थ्य प्राप्त हो गया, चिंतन भी अच्छा चल रहा, परंतु आप और भगवान के बीच में पतला सा प्रतिबंधक है, उसका नाम बुद्धिमान है, विषया शक्ति है या दुराग्रह है। उस प्रतिबंधक को दूर करने के लिए उपासना बदला रहे। उपासना कैसा? ब्रह्म फलक, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली। तो उपासना से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो तो प्रतिबंधक हटाता है। भगवान तो पहले से वहां मौजूद है, परंतु पर्दा हटा दिया, दर्शन हो गया, पर्दा दर्शन नहीं हो रहा। ऐसे यहां पर प्रतिबंधक हटाने के लिए बता रहे कि संवादी और विसंवादी दो प्रकार का भ्रम होता है। तो संवादी भ्रम से परमात्मा की प्राप्ति, विसंवादी से कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा कि दुनिया भी नहीं मिलने वाला है। सही बात है भाई, चाहे कितना भी दुनिया का कारोबार कर लो, व्यवहार कर लो, अच्छा बर्ताव कर लो, सब कुछ संग्रह कर लो, पर निश्चित है जब हमारा शरीर अक्षम हो जाएगा, सक्षम नहीं रहेगा, अस्वस्थ हो जाएगा, बिस्तर पड़ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। परीक्षा किया आप लोगों ने कभी? गिरीश भाई परीक्षा करना, मैंने किया है, मैंने भी एक हमारे साथियों ने भी किया, जब अच्छी विद्वान साथी लोग परीक्षा कर, कैसे करना, झूठ मूठ का उन्होंने बहाना बना दिए कि भाई बीमार है, शरीर ठीक नहीं है, है ना। तो दो दिन चार दिन दस दिन खूब लोग पूछते हैं, फोन करेंगे, आएंगे, बैठेंगे, जब मालूम पड़ गया ठीक नहीं तो बाहर से चले जाएंगे। कितना दिन रहेंगे बीमार? कोई पता नहीं। बोले क्या पता, लोग आना बंद कर देते, पूछना बंद कर देंगे। दो चार दस दिन महीना दिन सब पूछेंगे आपको, जब मालूम पड़ गया ना कि अब उठने वाला नहीं तो कोई पास भी नहीं आने वाला। इसी को बोलते दुनिया संसार, क्योंकि उसको पता है कि कोई काम आने वाला है नहीं, तो बिस्तर में पड़ा है, क्या इससे काम है अपना, इसी को बोलते संसार। तो आपने संसार में विषमवादी भ्रांति कर लिया। विषमवादी मतलब कि जैसे किसी ने दीपक के रोशनी को मणि मान लिया, इसको बोलते हैं विषमवादी। तो अंत में मिट्टी की दीवा हाथ लगेगी। ऐसी आपने संसार में सत चित आनंद है ऐसी भ्रांति कर ली। संसार की न सत्ता है, न कुछ चैतन्यता है, न इसमें आनंद है, पर भ्रांति हो गई तो अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। और संवादी भ्रांति बोलते हैं कि मंदिर के झरोखे में मणि रखी है और मणि की रोशनी बाहर आ रही है, रोशनी को हमने मणि मान लिया, दौड़ कर अगर वहां जाएंगे तो मणि मिल जाएगी। ऐसे आपने अपने जीवन में यह भ्रांति कर लिया कि भगवान की भक्ति करने से, वेद पाठ करने से, जप करने से, भजन करने से, निष्काम कर्म करने से, परोपकार करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये जो संवादी भ्रांति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जब वहां पास पहुंचेंगे तो जो अंतरात्मा अधिष्ठान चैतन्य, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यही दृष्टांत देकर यहां समझा रहे। तो संवादी भ्रम आपके लिए उपयुक्त है, जैसे है ना रामायण में कि भगवान शंकर ने बता दिया अपना अनुभव, उमा कहूं अनुभव अपना सत, आगे हरि भजन जगत सब सपना, सब सपना है, हरि भी सपना, हरि क्यों सपना है, सोपादिक ब्रह्म है, माया पति है, माइक ब्रह्म है, आपको तो अमायिक ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसलिए वह भी सपना कोटि में गिना है। चले आगे देखो, संवादी ब्रह्मवद ब्रह्म तत्व उपस्थापि मुच्यते। जैसे संवादी भ्रांति से मणि की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही तत्व की उपासना से भी आपको तत्व ज्ञान हो जाता है, आप नित्य प्रतिनियम से उपासना करें। क्या उपासना करते हैं कि ये भगवान शंकर है, इस सर्वग्राम साक्षात नारायण है, ये जगन्नाथ जी है, ये श्रीनाथ जी है, ऐसी भावना करते हैं ना। सामने तो लकड़ी का ढांचा है, परंतु हमारे दृष्टि में वो ढांचा नहीं, साक्षात भगवान है। सामने तो एक पत्थर की पिंडी है, गोल मटोल काली काली, पर उपासक की दृष्टि में गोल मटोल पिंडी नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। तो इस भ्रांति से उपासना करने पर भी कहते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उत्तरे तापनीय, ये उत्तर तापनीय उपनिषद में ये बात बताई गई है, श्रुतोपास्ति अनेकधा, अनेक उपासनाएं हैं। कुल मिला के जैसी भी हमारा चित्त शांत हो जाए, चित्त की निर्मलता के लिए अनेक उपासनाएं हैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी उपासना करके वहां तक पहुंच सकते हैं। देखो अपने यहां उदारता है, अन्य धर्म में उदारता नहीं, वो डंडे के बल, डंडा होता ना, एक ग्वाला पीछे रहता है और गाय भेड़ बकरियां आगे आगे चलती हैं। अन्यत्र ऐसा ही है कि बस ये बात मानो नहीं तो नरक, अपने ऐसा नहीं, अपने आप की मर्जी। चाहे शिव की उपासना करो, चाहे विष्णु की, चाहे हरि की, चाहे कृष्ण की, चाहे राम की, चाहे गौ माता, चाहे गुरु की, किसी की उपासना करो, या माता की उपासना करो, पिता की उपासना करो। पुंडरिक ने तो पिताजी को शंकर मान की उपासना किया। भाई जब पत्थर का जो पिंड है ना, छोटा सा पिंड गोलमटोल, जब पत्थर के पिंड में शंकर की भावना करने से जब शंकर की प्राप्ति हो सकती, तो चलते फिरते जो पिंड है, माता का पिंड, पिता का पिंड, उसमें यदि पार्वती शंकर की भावना करें तो जरूर भगवान की प्राप्ति होती है। पुंडरिक ने तो उसमें भावना किया था भगवान शंकर की और पार्वती की मां में, तो किसकी प्राप्ति, साक्षात वैकुंठ से नारायण आ गए। ये कलयुग की घटना है, कलयुग की। ऐसे यहां पर है तो भ्रांति, पर कैसी भ्रांति, संवादी भ्रांति है। तो संवादी भ्रांति से भगवान की प्राप्ति होती है, और विषमवादी भ्रांति से कुछ भी नहीं मिलता, न जगत मिलता है न भगवान की प्राप्ति। वही बात यह बता रहे कि उपास्ति अनेकधा, अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, आपकी मर्जी कोई भी उपासना कर लो। इसलिए ऐसा कहा ना, इसमें विज्ञान यह है कि उपासना में चित्त वृत्ति एकाग्र होना चाहिए, जो हमारी मनोवृत्ति है एकाग्र होना चाहिए। आपकी मनोवृत्ति जिस वस्तु में, व्यक्ति में चिपका हुआ है, लगा हुआ है, एकाग्र है, तो वहां पर मन तो लगाना नहीं, मन पहले से वहां लगा हुआ हमारा, सिर्फ वहां पर चैतन्य का चिंतन करना, इतना ही काम करना। अन्यत्र तो आपको देखो मन को लगाना है, वृत्ति बनानी है, ये रुचि पैदा करना है, उत्साह पैदा करना, फिर बाद में चैतन्य का चिंतन करना, दो डबल काम करना पड़ेगा। परंतु जहां पर हमारा चित्त चिपका है, मन लगा है, सिर्फ वहां एक काम करना है, केवल चैतन्य का चिंतन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा पति के पिंड में चित्त लगा हुआ है, तो शास्त्र कहता भाई उस हाल मां चाम पुत्र के पुतले को तुम पति मत मानो। क्या मानो, पति नहीं, परमेश्वर है, साक्षात नारायण है, ऐसा मानो। उसकी मनोवृत्ति पहले से एक पिंड में उलझी हुई है, लगा हुआ है, तो कहा कि भाई उस पिंड को हाल मां चाम का पुतला मत मानो, बल्कि क्या मानो, साक्षात यही नारायण है। जब ऐसी भावना करेंगे तो हाड मास चाम के पुतले के भीतर जो बैठा हुआ नारायण है, उस नारायण की अभिव्यक्ति हो जाती। जिस प्रकार दूध में पहले से घी छुपा हुआ है, जरा सी हमने उसको तपाया, मथानी घुमाया, घृत प्रकट हो गया। ऐसी जहां चित्त हमारा उलझा है, लगा है, वहां पर चैतन्य के चिंतन मात्र से चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती। अब किसी बच्चे की भावना माता पिता में है, माता पिता को बहुत मानता, कह जाए कि भाई ये माता पिता नहीं बल्कि साक्षात माता पार्वती है, पिता साक्षात महेश्वर है। अब किसी के पत्नी के पिंड में चित उलझा है, जैसे राम किस परमन की जीवनी आती है, उस शारदा को क्या मानते, साक्षात यही भगवती है, उसके पिंड में भगवती का अनुभव होता। ऐसे किसी का मनोवृत्ति चित्त चिपका है पत्नी से, तो कहा पत्नी ने बल्कि साक्षात ये नारायणी है, साक्षात लक्ष्मी है, भवानी है। ऐसा चिंतन करने से चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब किसी का चित्त अब बेटा में नाती पोता में चिपका है, तो बोल दिया भाई ये नाती पोता नहीं बल्कि साक्षात श्याम सुंदर है, ये लाडला नहीं बल्कि साक्षात श्याम सुंदर है। ऐसी भावना से चित्त निर्मल होता है। यदि आप अपने नाती पोते बेटे को बेटा नाती पोता मानेंगे तो मोह होगा, आकर्षण होगा उसके प्रति, है ना, आसक्ति होगी। यदि आपने वहां भावना की कि श्याम सुंदर है, ये मेरा कन्हैया है, तो ऐसी भावना करने मात्र से आपको धीरे धीरे चित्त निर्मल होगा और मोह जो है ना उपासना में परिणत हो जाएगा। इसी का नाम है संवादी प्रवृत्ति, इसको बोलते संवादी प्रवृत्ति बोलते हैं। तो अज्ञानी जीव क्या करता है कि सभी जगह विषमवादी प्रवृत्ति करता है, विषमवादी, संवादी नहीं करता। संवादी करो तब तो बड़ा आनंद ही आनंद है। तो सत्संग में आपको ये जो है ना सुनने को मिलता है, समझने को, तो भाई अपने को प्रवृत्ति कैसी करनी, संवादी करे सर्वत्र। तो उपासनाएं अनेक प्रकार से बताए, क्योंकि आपका चित्त में अनेक वृत्तियां हैं, अनेक भावनाएं हैं। टीका देख लीजिए, यथा संवादी भ्रमेण प्रवृत्तस्य अभिप्रेतार्थ लाभो भवति, जैसे संवादी भ्रम के द्वारा आप जब प्रवृत्त होते हैं, देखो भ्रांति बोलते हैं अतस्मिनी तद्बुद्धि को, भ्रांति बोलते हैं। जैसे कि आपने पाषाण खंड में भगवत तत्व के अभाव वाले पाषाण में भगवत बुद्धि किया तो भगवान की प्राप्ति, इस संवादी भ्रांति है। अभी संवादी बोलेंगे कि यह जो संसार है, इस हार मां चांद के पुतले में आनंद का भाव है, सुख का भाव है। आनंदत्व के अभाव वाले हार मां चांद के पुतले में आनंद बुद्धि का नाम है विषमवादी भ्रांति। भ्रांति दोनों बराबर है पर दोनों में बड़ा भारी फर्क है। विषमवादी भ्रम में कुछ भी नहीं मिलना, बल्कि उल्टा मोह होगा, दुख होगा, समस्या आएगी। और उस हाड़ मां श्याम के पुतले में संवादी भ्रांति करो, ये श्याम सुंदर है, ये लाडला नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति। वही बता रहे कि संवादी भ्रमेण प्रवृत्तस्य, जो प्रवृत्त है अभिप्रेतार्थ लाभ हो, आपका इष्ट मिल जाता है जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। ये वेदांत सभी के लिए है। वेदांत में कोई देश काल अवस्था व्यवस्था मजहब वर्ग किसी का वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है और आनंद चाहता है, सभी चाहते हैं ना, या कोई भी। तो वेदांत कहता है कि अभिप्रेतार्थ मतलब कि जो आप चाहते हैं आनंद शांति, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कैसे, तो ब्रह्म तत्वोपासनया, ब्रह्म तत्व की उपासना से अभिलषित ब्रह्म भाव लक्षणो मोक्षो भवति इत्यर्थ। जो आपको विलसित है उस आनंद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तत्र किम प्रमाणम, इसमें प्रमाण क्या है, किसी ने पूछा प्रमाण क्या है। इत्यत आह, तब बता रहे उत्तर तापनीय उपनिषद ने बताया है। यतः उपासनयापि मोक्षो अस्ति, अतः तापनीय उपनिषद उपनिषदि अनेक प्रकारेण ब्रह्म तत्व उपासना श्रुता उक्ता इत्यर्थ। टीकाकार कहते हैं कि भाई उपासना के द्वारा भी मोक्ष होता है, यह बात आपने उपनिषद में अनेक प्रकार से बताया है कि ब्रह्म तत्व का उपासना चिंतन करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से आप व्यवहारिक जगत में संवादी भ्रांति के द्वारा आत्मा की प्राप्ति करते और विसंवादी के द्वारा अनात्मा, अनात्मा मतलब कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है, न आत्मा अनात्मा कुछ भी हाथ नहीं लगता, ये पूरा संसारी विसंवादी भ्रांति में उलझा हुआ है। और ये बात समझ में आती बाद में, उस समय समझ में नहीं आती, बाद में जब बहुत लंबी यात्रा कर लेता है, जब बिस्तर पर आप गिर जाते तब समझ में आती है कि हाय हाय बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, कोई भी आज हमारे साथ नहीं। यह पहले ज्ञान हो जाए तो आप बिना बुलाए प्रेमपुरी आएंगे, बिना बुलाए घर बैठे सत्संग सुनेंगे, बोलो यही सब कुछ है। तो संवादी भ्रम के द्वारा उपासना को समझा रहे आपको, संवादी भ्रमवत इत्युक्तम प्रपंच हेतु संवादी ब्रह्म प्रतिपादक वार्तिकम पठती। संवादी ब्रह्म को समझाने के लिए संवादी भ्रांति के प्रतिपादक वार्तिक को पढ़ रहे हैं। मणि प्रदीप प्रभयोर मणि बुद्ध्याभिधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषो वर्त क्रियां प्रति। मणि प्रदीप प्रभयोः मणि बुद्ध्याभिधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषो अर्थ क्रियां प्रति। मणि और प्रदीप, मणि बोलते चिंता मणि ले लो, कोई मणि चमकीली, और दीपक जो मिट्टी का, जो दोनों की रोशनियां हैं, दोनों भ्रांतियां हैं, परंतु एक भ्रांति से मणि की प्राप्ति, दूसरे के भ्रांति से कुछ भी नहीं मिलता, खाली दीपक मिलता। अभी धावत तो जो दौड़ता है, टीका का समझा रहे टीका में, देख लो नीचे टीका पढ़ ले। मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषो अर्थ क्रिया प्रति, दोनों मिथ्या ज्ञान समान रूप से है पर अर्थ क्रिया के प्रति विशेषता है। मणिश्च प्रदीपश्च मणि प्रदीपो, मणि और प्रदीप दोनों, च मतलब और, मणि प्रदीपो तयो प्रभे मणि प्रदीप प्रभे तयो विग्रह, इसको बोलते हैं तत्पुरुष गर्भ द्वंद समास। तत्पुरुष के बीच में द्वंद समास है, तो मणि और प्रभा दोनों के जो रोशनियां हैं, प्रकाश है, उसमें मणि प्रभायाम दीप प्रभायाम च, मणि की रोशनी में दीप की रोशनी में, मणि बुद्धि सा मिथ्या ज्ञानमेव, मणि बुद्धि मिथ्या ज्ञान है। एक झरोखे में मणि है, दूसरे झरोखे में दीपक जल रहा है, तो एक आदमी मणि के रोशनी को मणि मानकर दौड़ रहा, एक आदमी दीपक के रोशनी को मणि मान के दौड़ रहा, दोनों दौड़ रहे। तो जो आदमी मणि के रोशनी को मणि मान के दौड़ा उसे मणि मिल जाएगी, इसको संवादी भ्रांति बोलते। और जो आदमी दीपक के रोशनी को मणि मानकर दौड़ा वहां जब जाएगा तो केवल मिट्टी का दीवा हाथ लगेगी, कुछ भी नहीं, उसको भी संवादी बोलते। वही लिखा कि अतस्मिन तद्बुद्धि, दोनों भ्रांति है। अथापि मणि प्रभायाम चया मणि बुद्धि, जो मणि की प्रभाव में मणि बुद्धि है, अर्थ क्रियाकारी प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, मणि मिल जाएगी। मणि बुद्धिया विधावत पुरुषस्य मणि लाभो भवति, मणि का लाभ हो जाएगा। इतरस्य तु नास्ति इत्यर्थ क्रियाम वैषम्यम इत्यर्थ, जो आदमी दीपक के रोशनी को मणि मानकर दौड़ रहा ना उसको इतर बोलते, उस आदमी को हो अर्थ क्रिया मल्ल की मणि नहीं मिलेगी, उसका दौड़ना बेकार हो गया, उल्टा हो गया, वो दौड़ा हाथ पर थक गए, हाथ पर भी थक गए और वहां गया तो मगज मार रे, मैं मणि मानकर दौड़ा था, हाथ कुछ नहीं लगा, अब माथा पकड़ के बैठ जाता, ऐसा होता ना व्यवहार में, वैसे समझना व्यवहार में। व्यवहारिक जगत में अज्ञानी जीव क्या करता है कि संसार के रोशनी, रोशनी मतलब कि जो संसार की चमक दमक है, ऐश्वर्य है, समृद्धि सुख है, उस संसार के चमक दमक ऐश्वर्य समृद्धि में मणि मतलब आनंद बुद्धि, चेतन बुद्धि, सत्ता बुद्धि, क्या सोचता है इतना मैं संसार हासिल कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, अर्जन कर लूंगा तो मैं सत्ता बरकरार रहेगी, 100 पीढ़ी तक मुझे याद करेंगे। लोग सोचते ना, इसको सत्ता बुद्धि बोलते। दूसरा चैतन्य बुद्धि, कोई मेरा नाम मिटा नहीं पाएगा, मैं बिल्कुल रहूंगा, सबके सामने रहूंगा ज्ञान रूप से। तीसरा आनंद, फिर आनंद की प्राप्ति होगी। इस बुद्धि जो संसार में दौड़ता है अंत में कुछ नहीं मिलता है, माथा पकड़ के बैठ जाता है, धोखा हो गया, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। और जो विवेकी है, ज्ञानी है, समझदार, वह मणि प्रभा मतलब कि जो भगवान की भक्ति है, जो सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है, उस भगवान की भक्ति परोपकार है, निष्काम कर्म है, सत्कर्म है, उसमें आनंद बुद्धि करके दौड़ता है तो आखिर मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो भ्रांतियां दोनों है, पर एक भ्रांति में आनंद की प्राप्ति, दूसरे भ्रांति में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो बढ़िया कौन सा, संवादी कि विसंवादी? संवादी। संवादी मतलब यदि भ्रांति करनी है तो भगवान की भक्ति से, परोपकार से, सत्कर्म से, विराट परमात्मा की सेवा, यह भी है तो भ्रांति, पर भ्रांति से परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि अनेक रूप में परमात्मा ही मौजूद है। जितना भी ब्रह्मांड है उस पूरे ब्रह्मांड रूप से परमात्मा छाया है, ऐसा मानकर जो परोपकार करता समाज की सेवा, उस सेवा से विराट परमात्मा प्रसन्न होते हैं, फिर उसका साक्षात्कार। पर जिसने मात्र संसार के चमक दमक ऐश्वर्य को सब कुछ माना, उसी के पीछे भागता है तो भागते भागते बुढ़ापे में हाथ कुछ भी नहीं लगता, फिर क्या माथा पकड़ के बैठ जाता कि भाई धोखा हो गया, मैं समझा था कि मणि मिलेगी पर क्या मिला, मिट्टी का दीवा। वही होता है ना, दुनिया वाले को ही होता है, पर आपको ऐसा नहीं होगा। आपको मणि के प्रभाव को मणि समझ के दौड़ रहे तो आज निकल तो बिल्कुल चिंतामणि आत्मा की उपलब्धि होनी ही होनी है, शेष कल सुनेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।